लुका अध्याय 14। एक सबत के दिन जब यीशु फरीसी के घर खाना खाने गए हुए थे, सभी की आंखें उन पर लगी हुई थीं। यीशु के सामने ही एक जलंधर से पीड़ित व्यक्ति था। यीशु ने शास्त्रियों और फरीसियों से पूछा,
क्या विश्राम दिन में किसी को स्वस्थ करना जायज है?
लेकिन वे सभी खामोश रहे और यीशु ने उसे ठीक करके भेज दिया। यीशु ने उनसे पूछा,
तुम में से ऐसा कौन है जिसका बेटा गधा या बैल विश्राम दिन में कुएं में गिर जाए और वो उसे ना निकाले?
वह इसका उत्तर ना दे सके। नेवते में बुलाए हुए लोगों को अपने लिए अच्छी जगह ढूंढते हुए देखकर यीशु ने कहा,
जब तुम्हें किसी विवाह की दावत में बुलाया जाए तब तुम सामने की कुर्सी पर मत बैठना। यदि तुमसे ज्यादा सम्मानीय व्यक्ति को भी वहां बुलाया गया है तब तुम क्या करोगे? घर का मालिक आकर कहेगा, इस व्यक्ति के लिए जगह खाली करो, तब तुम्हें अपमानित होकर छोटी जगह पर बैठना होगा। इसके विपरीत जब तुम्हें नेवता मिले तो मामूली जगह पर बैठ जाओ, ताकि तुम्हारा न्योता देने वाला तुम्हारे पास आते ही तुम्हें एक सम्मानीय जगह पर बैठने के लिए कहे। इससे सभी मेहमानों के सामने तुम्हें इज्जत मिलेगी। इसलिए कि जो कोई अपने आप को बड़ा करेगा दीन किया जाएगा, और जो अपने आप को नम्र करेगा अधिक सम्मान पाएगा।
तब यीशु ने उससे जिसके यहाँ बुलाए गए थे कहा,
जब तुम किसी को अपने यहाँ खाने या दावत पर बुलाओ तो अपने दोस्तों, भाइयों या रिश्तेदारों या अमीर पड़ोसियों को मत बुलाना, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें नेवता दें और बराबरी हो जाए। लेकिन जब तुम दावत करो तो गरीब, अपंग, लंगड़े लूले को नेवता देना। वापस उनके तुम्हें नेवता ना दे सकने के कारण तुम आशीषित ठहरोगे, और धर्मी ठहराए लोगों के जी उठने के समय में तुम्हें बदला मिलेगा।
इन बातों को सुनते ही वहां बैठे एक मेहमान ने कहा,
परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना क्या ही बड़ी बात है, आशीषित है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाए।
तभी यीशु ने इस तरह उत्तर दिया,
एक आदमी ने एक बड़ी दावत की और बहुत से लोगों को नेवता दिया। जब सारी तैयारी हो चुकी तो उसने अपने नौकरों को मेहमानों के यहाँ बुलवाने के लिए भेज दिया, लेकिन वे सभी बहाना बनाने लगे। एक ने कहा कि उसे माफ किया जाए क्योंकि उसने एक खेत मोल लिया है और उसकी जांच पड़ताल के लिए जा रहा है। दूसरे ने कहा कि उसने 5 जोड़ी बैल लिए हैं और उनको परखने के लिए जाना है। तीसरा व्यक्ति इसलिए नहीं आ सका क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। नौकर ने वापस लौटकर सब कुछ बता दिया जो लोगों ने उससे कहा था। इसके बावजूद वहां फिर भी जगह थी। इसलिए मालिक ने गुस्से में कहा, आसपास की बस्तियों और सड़कों पर जाओ, भिखारियों, लंगड़ों लूलों और अंधों को बुला लाओ। जो कुछ शुरू में बुलाए गए लोगों के लिए तैयार किया गया था उसमें से वे कुछ भी चखने ना पाएंगे।
एक बड़ी भीड़ वहां आ चुकी थी और यीशु ने मुड़कर उनसे कहा,
जो कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है उसे चाहिए कि वो अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों या भाइयों, यहाँ तक कि अपने जीवन से ज्यादा मुझसे लगाव रखे, नहीं तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरी सुनकर जीना नहीं चाहता वो मेरे लायक नहीं है। इसलिए जब तक कीमत ना आंक लो शुरुआत मत करो। वो कौन है जो बिना ये देखे कि उसके पास सारे बिल चुकता करने के लिए काफी पैसा है या नहीं किसी इमारत को बांधने का काम शुरू करेगा? नहीं तो नींव रखते रखते उसका पैसा खत्म हो जाएगा और सभी उसकी हंसी उड़ाएंगे। ठट्ठा करते हुए लोग कहेंगे, देखो इस आदमी को, उसने घर बनवाना तो शुरू किया लेकिन पूरा बनने से पहले ही उसका पैसा खत्म हो गया। या वो कौन सा ऐसा राजा होगा जो बिना अपने सलाहकारों से सलाह मशवरा किए अपनी 10,000 सैनिकों की सेना से 20,000 सैनिकों वाली सेना का मुकाबला करने की स्वप्न में भी हिम्मत करेगा? अगर वो मुकाबला ना कर सकने की हालत में होगा तो जब दुश्मन की सेना बहुत दूर ही होगी, वो दोस्ती का प्रस्ताव रखेगा। इसी तरह तुम लोगों में से हर एक जन जो कुछ तुम्हारा अपना है, जब तक उससे अपना लगाव ना छोड़ दे, मेरा शिष्य नहीं बन सकता। नमक अच्छा है, लेकिन अगर उसका नमकीनपन चला जाए तो उसे फिर से खाने लायक कैसे बनाया जा सकता है? बेस्वाद नमक ना तो जमीन में डालने लायक रहेगा, ना खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा, उसे फेंक दिया जाएगा। हर व्यक्ति जो सुन रहा है, ध्यान से सुने और समझ ले।